संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम का संवर अधिकार चल रहा है, जिसमें भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया है। पर भेद विज्ञान का क्या महत्व है, उसकी क्या कीमत है, मुक्ति के मार्ग में उसका क्या स्थान है, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, जिसका केंद्र बिंदु ये था कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकल केचना, असई भाव तो बद्धा बद्धा किल केचना किल केचना। आज तक जितने भी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और आज तक जितने भी जीव चार गति और 84 लाख योनियों में रखड़ रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। तब ये सवाल शुरू होता है कि आखिर ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। समय सार में जिस भगवान आत्मा की चर्चा है, और आत्मा को जैसे पर से भिन्न राग से भिन्न अजर अमर अनादि अनंत बताया गया है, वैसा ही वेदांत में भी भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है। गीता में भी जो वेदांत का सार है गीता, उसमें भी आत्मा का स्वरूप वैसा ही बताया गया है। उसमें भी ऐसा लिखा है कि भगवान आत्मा कैसा है, नैवम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवम दहति पावका, कि जो हथियारों से छेदा नहीं जाता है, अग्नि से जलाया नहीं जाता है, पानी में गलता नहीं है, ऐसा है वो। और जैसे देह से पृथक यहां कहा है, ऐसे वहां भी कहा है कि जैसे हम सुबह वस्त्र पहनते हैं और शाम को उतार देते हैं और वस्त्र बदल लेते हैं, ऐसे ये शरीर है जिन्हें ये आत्मा बदल लेता है। ये आने जाने हैं और आत्मा अनादि अनंत है। इसलिए लोगों को ये कभी कभी भ्रम होता है कि वेदांत और समय सार ये दोनों की विषय वस्तु लगभग एक सी है, अथवा समय सार पर वेदांत का असर है, हैं? ये सब बातें एक सी ही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर ऊपर की ये बातें एक सी मिलती ही हैं, मिलती भी हैं, किंतु अंतर का जो अंतर है सबसे बड़ा वो ये भेद विज्ञान का अंतर है। भेद विज्ञान का अंतर क्या है कि उनके यहां तो ये कहते हैं कि सारा जगत एक है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्मानेह नानास्ति कंचना, आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। सारा जगत ब्रह्ममय है, नेह नानास्ति कंचना, जुदा जुदा कुछ भी नहीं है। जो इसे जुदा जुदा देखते हैं वे अज्ञानी हैं। सारा जगत अज्ञानी है और इसे जुदा जुदा देखता है, और जो इसे एक मानता है वो ज्ञानी है। सियाराममय सब जग जानी, सारा जगत तो सियाराममय ही है। उनकी मान्यता ये है, सीधे सच्चों में शब्दों में ये है, सबको एक मानना अभेद मानना एक ज्ञान है, और सबको जुदा जुदा मानना ये अज्ञान है। मैं और भगवान एक ही हूं ये मानना ज्ञान है, और भगवान जुदे हैं और मैं जुदा हूं वे परतत्व हैं, ये मानना अज्ञान है उनके हिसाब से। जबकि जैन दर्शन ये कहता है कि ये दो द्रव्यों को एक मानना ये अज्ञान है। भगवान भी जुदे हैं, अंत सिद्ध भगवान भी तेरे से भिन्न तत्व हैं और उनके आश्रय से भी राग की उत्पत्ति होगी, पुण्य का बंध होगा, धर्म नहीं होगा। तू बिल्कुल स्वतंत्र चेतन तत्व है। तो एक जगत को दो भागों में बांटकर और उनके बीच में भेद की रेखा खींचना, ये जैन दर्शन का भेद विज्ञान है। और गीता और उपनिषद कहते हैं अथवा वेदांत कहता है कि इन दोनों में जो तुमने भेद की रेखा खींच रखी है यही अज्ञान है, और उनको एक मान लो तो इस समय ज्ञान हो गया। ये जो महान अंतर है वो अंतर इस भेद विज्ञान का ही है। तो समय सार में जिस आत्मा का वर्णन है, अजर अमर अनादि अनंत देह से भिन्न, वैसा वेदांत में भी मिल जाएगा। कुछ बातें वेदांत से मिल जाएंगी, लेकिन जो बात का अंतर है वो असली भेद विज्ञान का है। जैन दर्शन में ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा एकदम सेपरेट इकाई है, यूनिट है, और उनका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर और अपने में लीन हो जाना ये अनंत सुखी होने का उपाय है। और उनके यहां कहते हैं कि भगवान और अपने को एक जानकर और भगवान में लीन हो जाना, अपनी सत्ता को भगवान में समाहित कर देना, वो सुखी होने का उपाय है। इसलिए जिन अध्यात्म में और वेदांत के अध्यात्म में जो सबसे बड़ा अंतर है वो भेद विज्ञान का है। और समर अधिकार भेद विज्ञान का, अभिनंदन का अधिकार है, उपसंहार का अधिकार है, समय सार के मंदिर पर शिखर चढ़ाने का अधिकार है। अब ये तो बात हुई कि जैन अध्यात्म का मर्म क्या है और उसमें भेद विज्ञान का क्या स्थान है। तो अब ये कहते हैं कि भेद विज्ञान हमें करना किससे है। तो पहली बात है कि हमें सबसे ही करना है, लेकिन अपन यहां से बात शुरू करते हैं कि जो चीजें आज तक हमारे जानने में ही नहीं आई हैं और हमसे इतनी दूर हैं, क्या कि जिनमें हमें अपनेपन की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती है। अब वे मैं नहीं हूं, वे मेरी नहीं है, मैंने उनका त्याग किया, इस बात में क्या दम है, है ना। इसलिए बात यहां से शुरू होती है। वैसे तो अपन ये भी कहते हैं कि धर्म द्रव्य मैं नहीं हूं, अधर्म द्रव्य मैं नहीं हूं, तो वहां भी आचार्यों ने ऐसा प्रश्न उठाया है कि धर्म द्रव्य को माना किसने अपना है, जो आप हमें बता रहे कि धर्म द्रव्य मैं नहीं हूं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। तो आचार्यों को ऐसा जवाब देना पड़ा कि धर्म द्रव्य के बारे में जो हमारे दिमाग में चिंतन चलता है, धर्म द्रव्य का जो ज्ञान हमें होता है, धर्म द्रव्य जो हमारे जानने में आता है, वो जो जानने रूप विकल्प है, वो जानने रूप चिंतन है, उसका नाम भी धर्म द्रव्य है। क्या कहते हैं, जैसे पानी नाम का पदार्थ है उसका नाम पानी है ना, तो पानी नाम के शब्द का नाम भी पानी है। पानी नामक शब्द लिखो ना, पाव नी, उसे भी पानी ही तो बोलते हैं ना। तो हमारा उस विकल्प में एकत्व हो जाता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य में एकत्व। ऐसा करके रास्ता निकालना पड़ा, है ना, वो उसका नाम है धर्म द्रव्य में एकत्व। हमारे दिमाग में विकल्प उठे ना, संकल्प खड़ा हुआ ना धर्म द्रव्य के बारे में, वो उसका नाम है धर्म द्रव्य, उसमें एकत्व बुद्धि करती है। कहने का मेरा आशय यह है कि हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार जो भी बाह्य संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, हमारा भेद विज्ञान का चिंतन वहीं से आरंभ होता है और वहीं से आरंभ होना चाहिए। समझे ना? माने जिन्हें लोक में हम कहते हैं ये पड़ोसी का मकान मेरा नहीं है, इसमें क्या दम है? लेकिन जिस मकान पे तूने लाखों रुपया खर्च करके और खरीदा है, रजिस्ट्री अपना नाम कराई है, और जिसमें एक कील ठोको तो तुझे ऐसा लगता है कि मेरी छाती में कील ठोकी जा रही है, जिसके तूने पूरी सास संभाल की है, वो मकान मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है और उसका कर्ता धर्ता भोगता मैं नहीं हूं, इसमें कुछ दम है ना? बात है ना? इसलिए भेद विज्ञान की शुरुआत कहां से होती है कि हमारे खासकर पुण्य पाप कर्म के में भी शामिल है, लेकिन पाप कर्म के उदय से जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उन्हें तो हम वैसे ही छोड़ना चाहते हैं, उन्हें हम अपनी मानने को वैसे ही तैयार नहीं होते हैं, है ना? उनके लिए तो हमारा खोटा बेटा हो, हमारे अनुकूल नहीं हो तो पाप कर्म के उदय से मिला ना, अखबार में घोषणा करते हैं कि ये मेरा नहीं है, और उससे पिंडा छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं छुड़ाना चाहते हैं, प्रतिकूल पत्नी हो तो तलाक देके उसे पिंडा छुड़ाना चाहते हैं, है? इसलिए पाप कर्म के उदय से जो संयोग प्राप्त हुए हैं वो भी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, उनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इस चिंतन में भी ज्यादा दम नहीं है। इसलिए पुण्य कर्म के उदय से जो अनुकूल सामग्री हमें उपलब्ध हुई है वहां से ही वास्तव में भेद विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है। समय सार ने तो मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं यहां से शुरू की और ये कह दिया कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर नहीं है, ये तो हम पहले प्रवचन सार में और पंचाष्टी काल में के आए हैं वहां से समझ लेना, और थोड़ी चर्चा हमने चंदाचार्य ने तीसरी गाथा की टीका में कर दी संक्षिप्त में, और विस्तार से तो फिर कही भी है बात। मेरे कहने का आशय यह है कि इन संयोगों में जिनमें हमने एकत्व बुद्धि कर रखी है और दुनिया जिन्हें व्यवहार से अपना कहती है, दुनिया कहती है और आगम में भी लिखा है, ध्यान में आए ना, वहां से बात शुरू होनी चाहिए। और उसको अपने एक शब्द में बोलें तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और देश, पर मेरा तो एक लिमिटेड शब्द है जो स्त्री से शुरू होते हैं और देश पर खत्म होते हैं, क्या है? स्त्री पुत्र मकान, स्त्री पुत्र इसमें आ गया सारा परिवार, और मकान जायदाद इसमें आगी सारी संपत्ति, फिर गांव नगर देश इसमें आ गया ये सारी दुनिया जिसे अपन कहते हैं, जिसमें अपना अपन कहते हैं। अभी इसका विकास नहीं हुआ है हमें, हम मैं राजस्थानी हूं या तो मैं कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं ये भी मैं कहता हूं, लेकिन मैं दुनिया का वासी हूं, सारी दुनिया का भी एक नाम नहीं पड़ा है, और कोई आदमी ऐसा अहम नहीं करता है कि मैं सारी दुनिया का वासी हूं, लेकिन मैं भारतवासी हूं ऐसा कहता है। अभी विश्व नागरिकता का प्रचलन नहीं हुआ है, देश की नागरिकता का प्रचलन है, इसलिए अपनी बात अपन वहीं तक रखें। तो पहला स्टेप भेद विज्ञान का ये है, तो इससे भेद विज्ञान कराने के लिए समय सार के पाठक को ज्यादा समय अपन को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही हमसे बिल्कुल अपने पृथक पदार्थ हैं और जिनका वियोग होते हम अपनी आंखों से देखते हैं, यदि वो मैं होते तो उनका वियोग संभव नहीं था, क्यों? और उनमें कुछ करने की बातें तो कई दफे हमारे अनुभव में आ जाती हैं कि हम हजार प्रयत्न करते हैं और कुछ हमारा नहीं चलता है उसमें, और बारह भावनाओं के चिंतन में भी खूब इनकी चर्चा की है, शुद्ध धारा हो ना सीरी सब स्वार्थ के हैं धीरी, ये सारी चर्चा की है। तो अपन तो इतनी बात कहकर यहां समाप्त करते हैं कि भाई ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। इसमें भी सब कुछ आ गया कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। मैंने मकान बनाया, मैंने ये संस्था बनाई, मैंने देश की सेवा की, समाज की सेवा की, परोपकार किया, ये सारी बातें, ये परोपकार वाली बातें सब यहीं पर एक जीरो हो जाती है। ये अंतिम नंबर का जो व्यवहार है ना, ये इसका नाम उपचरित असद्भूत नाम दिया था ना जनवाणी में, अपन ने चर्चा की थी जिसमें, ये सारा जगत परोपकार वाला मामला इसमें ही आता है। और परोपकार तो आज का सारे सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है। क्यों? जो अजैनी लोग तो इसको धर्म बड़ा मानते ही हैं, तो कौन सी गजब है। लेकिन जिस जैन धर्म में डंके की चोट ये कहा कि तू पर का भला बुरा कर ही नहीं सकता, उस जैन धर्म में भी अंडे बच्चे से लेकर आबाल गोपाल, ऐसा समझ लो आप, जो सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, वे सब लोग आज सबसे बड़ा धर्म इसको ही मान रहे हैं और घोषित कर रहे हैं। और इसके विरुद्ध एक शब्द बोल के देखो तो पता चल जाएगा। सारी जिंदगी आठ द्रव्य से पूजा कर रहा हो, अरे चढ़ाओ उनको, पूरा करो, लेकिन उनके इस बात को एक शब्द बोल दो, फिर देखो तमाशा क्या हो जाएगा। फिर ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मैंने तो पूरा जी लिया है अब ब्याज का। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक परोपकार वाली बात जो बिल्कुल उपचार असद व्यवहार नये का कथन है, हैं? और जिसके त्याग की बात सर्व बोली मान, त्याग का मतलब क्या है बोलो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद का हम त्याग करके और नग्न दिगंबर हो गए, इसका अर्थ क्या है कि कल से हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद की चिंता नहीं करेंगे, यही अर्थ है ना। उनके बारे में कुछ नहीं करने का विकल्प नहीं करेंगे, उनके बारे में करने का, भोगने का और उन्हें अपना मानने का, इसी का नाम त्याग है, कुछ और नाम का बोलो। कल तक तुम क्या करते थे, विकल्प ही तो करते थे ना, अब वही नहीं करोगे, ये अर्थ हुआ ना उसका। और अब त्यागने के बाद भी हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद की सबकी चिंता रखने लग जाए, बाबू साहब रखे रहे, तो फिर मैं पूछता हूं क्या छोड़ा। तो अगर स्त्री पुत्र मकान जायदाद की जो करे वो बेवकूफ है, हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद की कहां करते हैं, हम तो पूरी समाज की करते हैं, हम तो पूरी देश की करते हैं, हम तो गाय भैंस की करते हैं। क्यों समझ में आए ना? तो जो नजदीक के थे, जिनकी करना ग्रस्त धर्म में ड्यूटी थी, जब उनकी करना भी वहां उचित नहीं है, तो जिनकी हम ग्रस्त में भी नहीं करते थे, ग्रस्तों को भी जिसके माथे जिम्मेवारी नहीं है, अब उनकी अब करने का क्या मतलब है, देह की तो करना नहीं और सारी दुनिया की करना क्या, हम क्या करते हैं? अरे भाई साहब, करते तो न जब थे न अब थे न कभी करोगे, विकल्प ही करते थे और विकल्प अब भी कर रहे हो, तो उसका पूरा कर्तापना है, ऐसा समझ लेना। हाँ कोमल चंद जी आता है, भाई और क्या करते, विकल्प ही तो करते हैं, कभी मेरे को ये विकल्प है, कभी ये ऐसा हो, तो विकल्प ही करते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ करते ही नहीं है, करना संभव ही नहीं है। तो पहले भेद विज्ञान, या भेद विज्ञान का अर्थ क्या था, चार बातें कि वे मैं नहीं हूं, वे मेरे नहीं हैं और मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तत्संबंधी विकल्प का भी नहीं होना, इसका नाम त्याग है। ये पहला भेद विज्ञान यहां शुरू होता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर अपना शरीर पे आता है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोय। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी जो घर संपत्ति स्त्री पुत्र मकान जायदाद मां बाप ये सब शरीर के ही संबंधी हैं, अपने थोड़ी है। शरीर के कैसे अपने कैसे नहीं है? ये स्त्री पुत्र जो तेरे से राग कर रहे हैं तेरे से कर रहे हैं कि शरीर से कर रहे हैं? बोल। टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसका पता तेरे को तब चलेगा कि जब तू यदि मर जाए और मर जाने के बाद कहूं भूत बन जाए, दंतर बन जाए और अपने पुत्र आदि के राग के कारण अपने ही घर में आ जाए। क्यों? जो घर तूने पाप कर करके कमा के उसे दिया है इसलिए दंतर बना है। क्यों? उसी घर में आ जाए तो उसको बुलाकर कौन होता है वो, और उसको तेरे को किलवाएंगे कि ये घर में नहीं आ पाए। तो कीलना भी दो तरह का होता है कि एक तो अपने मकान को कील देते हैं कि इसके भीतर वो नहीं आ पावे, और एक ऐसा होता है कि उसको ही कील दें कि वो कहीं से हिल नहीं पाए। वो बेंतर किलते हैं कि नहीं किलते हैं वो अलग बात, जाने दो। देवगति में क्या मर्यादा है कि नहीं जाने दो, लेकिन तूने उसने तो ये कहा ना कि ये जो वेंतर को हम अभी कील देंगे और ये एक वृक्ष में कीली गाड़ के लगा देंगे जिंदगी भर यही बंधा रहेगा। क्यों? ये कहा ना, और तूने उसे 1000 रुपया दे करके वो ही करवाया ना। वो बंद हुआ कि नहीं हुआ वो तो वस्तु के स्वरूप की बात है, लेकिन तेने तो विकल्प कर्मे सगे बाप को एक कील में पैसा देके किलवा दिया उसी का दिए हुए पैसे से। सोच लो सब अच्छी तरह से। क्या तो किससे करते थे? तो देह खत्म हो गई, हम तो जलाया है, अब हमारा कोई नहीं है। जिसे जलाया है वो था हमारा, तो क्यों? मैं आपको एक सही घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, एक बिल्कुल अभी ताजी है कि एक सेठ था, उसके 2-3 बच्चे हैं और वो मरा तो सामने ही एक एमएलए चमार था, हरिजन एमएलए, उसके पोता पैदा हो गया। और जब वो बड़ा हुआ 2-3 का तो उसे जाते स्नान हो गया। सही घटना है। अब उसे पता चल गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, सामने आकर वो बोलने लग गया। क्या ये बोलने लग गया? सामने सेठ का बड़ा बंगला, उसकी भी सामने छोटा सा मकान था। वो एमएलए था ना, वो भी साधारण आदमी तो नहीं था लेकिन हरिजन था और ज्यादा संपन्न भी नहीं था। 20 साल तक एमएलए रहा था उसका बाबा जब वो पैदा हुआ। तो जब वो ये बात ज्यादा फैलने लगी तो उसे 1-2 लाख रुपया देकर किसी तरह बंद करवाई गई बात द्वारा मुंह पर नहीं निकाले। उसका ऐसा इलाज कराया कि वो इसको भूल जाए। बोलो। पत्नी भी बैठी है, बच्चे तो अलग बात है। समझ लो तुम कि तुम देह को सब लोग अपना मानते हैं, हैं? क्या कहते हम बहुत जरूर हैं। ए गुरुदेव श्री आप स्वर्ग में चले गए तो हमारी सुध लेना, यदि भी अपनी सुध लेने आ गए तो कहीं अपन भी किलवाने का इंतजाम ना करने लग जाए। जिंदा पंडित हुकुमचंद आपको प्रश्न सुनाता है तो बहुत अच्छा है, यदि मरा हुआ पंडित हुकुमचंद यहां आएगा तो आप भी जाके पदमपुरा ले जा करके उसे पदमपुर भगवान के चरण में कर देंगे। कहते नहीं रहो। यानी आप समझ लेना कि किससे सारा जगत अपनापन करता है, यानी ये सारे स्त्री पुत्रादिक जो हैं ये किसके साथी हैं? इनने बराबर तेरे से नाता जोड़ा ही नहीं है, देह से नाता जोड़ा है। और जब देह मैं नहीं हूं तो ये मेरे कौन हुए? बोलो। देह में मेरा अपनापन हो तो ये सारे रास्ते खुलते हैं। सारे नाते देह सो, मेन कनेक्शन क्या है? देह। और मेन कनेक्शन यदि बंद कर दो तो सारे नाते रास्ते बंद हो जाएंगे। तो दूसरा भेद विज्ञान यहां से शुरू होता है। तो ये संबर अधिकार है ना, संबर अधिकार, तो मैंने लिखी ना संबर भावना। संबर भावना में यहां से ही बात शुरू की, स्त्री पुत्रादिक से बात ही शुरू नहीं की, यहां से शुरू की कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, हे राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्न है। के भगवान आत्मा, भेद विज्ञान करके जिस तक तुझे पहुंचना है वो देह रूपी मंदिर में रहता है, देह देवल में रहे। ये जिनकी मूर्तियां अपन ने विराजमान कर दी हैं, आदिनाथ से लेकर महावीर तक की मूर्तियां रहती हैं इस मंदिर में। भगवान तो सिद्धशिला में रहते हैं, पर मूर्तियां कहां रहती हैं? इधर लोक में मंदिर जिन्हें बनाए हैं। लेकिन तेरा जो असली भगवान है, अथवा जो तू है, जो तू स्वयं भगवान है, ये भगवान देह रूपी देवालय में रहता है। कि देह तो अपन को काराग्रह है, शास्त्र में लिखा कि तन काराग्रह बनता बेड़ी परिजन जन रखवारे। और तुम्हें इस देह जो जेल है उसको मंदिर कहते हो क्यों? अरे उसके मंदिर कहने का क्या प्रयोजन है तुम उसको नहीं समझते? मंदिर कहने का क्या प्रयोजन है? उर्मिला थी ना, उर्मिला, लक्ष्मण और उर्मिला पति पत्नी थे ना दोनों, राम के भाई छोटे लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला। बैठे बैठे बार 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 आपस में बात करते थे, तो बातें तो बहुत होती थी, कुछ सारी बातें तो सुनाने का मेरे को आपको समय नहीं है। लेकिन एक उन्होंने कहा क्या कि महारानी महारानी, तो क्या महारानी महारानी करते हो? सीधा उर्मिला नहीं कह सकते? मैं सब समझती हूं, तुम मुझे महारानी महारानी क्यों कह रहे हो? क्योंकि खुद को महाराजा बनना है। यदि मुझे दासी कहोगे तो खुद क्या बनोगे? क्योंकि दासी का पति तो दास होता है और महारानी का पति महाराजा होता है। तो तुम मुझे जो महारानी कह रहे हो वो मेरी महिमा बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन ये बता रहे हो कि मैं महाराज हूं। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही देह को हमने जो नहीं कहा, देह में जो विराजमान होता है तो देह को मंदिर कहेंगे, तो मंदिर में कौन विराजमान होता है? भगवान। तो आत्मा को भगवान कहने के लिए देखो देवल कहा। क्या समझे ना? कि देह देवल में रहे माने देह रूपी मंदिर में रहता है। मंदिर में कौन रहता है? भगवान। हवेली में कौन रहता है? रईस। महल में कौन क्या रहता है? राजा। झोपड़ी में कौन रहता है? गरीब। बंगला में कौन रहता है? बाबू साहब, साहब। माने ये जो सब मकान के ही हैं, झोपड़ी, घर, बंगला, महल, हवेली, ये सब नाम मकान के ही हैं, लेकिन इनके कहने से इनमें रहने वाला कितना छोटा बड़ा है इसका पता लग जाता है। तो मंदिर भी घर का ही नाम है। तो जैसे अपन कहे महल में, तो महल में कहते ही समझते हैं राजा की बात होगी, है ना? हवेली में कहते ही लगता है कि जैसे रहीस की बात होगी, ऐसे ही मंदिर में रहने की बात कहते ही लगता है कि भगवान की बात होगी। ये देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह नहीं है, है ना? मंदिर में भगवान रहते हैं लेकिन भगवान मंदिर नहीं है। कि कितना फर्क है, कि बहुत फर्क है। वैसे तो नव देवताओं में जिन प्रतिमा भी एक देवता है और जिन मंदिर भी एक देवता है ना, नौ देवताओं के नाम जानते हैं ना, जिन प्रतिमा और जैन धर्म, ये हो गए नौ देवता। अब देखिए कितना फर्क है, जिन मंदिर भी एक और जिन प्रतिमा भी एक। अब जिन मंदिर की छाती पे लात रख के आप चढ़ते कि नहीं चढ़ते, जूता पहन के जाते हो चाहे नहीं जाते हो, लेकिन पैर क्यों, पैरों से तो जाते कि नहीं, और मंदिर में पैर रखते कि नहीं रखते, और जिन प्रतिमा के क्या बात करते हो, दोनों देवता हैं और एक देवता की छाती पे पैर रख दिया और दूसरे देवता के चरणों में माथा, क्यों फर्क है कि नहीं है? तो देह तो मंदिर है, मंदिर माने चरण रखने लायक, और आत्मा भगवान है माने उसके माथे में, उसके चरणों में माथा रखने लायक। ऐसा नहीं समझ रहे, देह को मंदिर कह दिया तो बहुत महिमा बढ़ गई उसकी। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, देह नहीं है, धोखे में मत रहना। बोला तो ऐसे ही जाता है कि भाई साहब जैन मंदिर कहां है, कि क्यों के दर्शन करना है, कि मंदिर के दर्शन करना है, कि हां मंदिर के दर्शन करना है, मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मंदिर के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाता हूं। होता क्या नहीं होता, क्या बोलते, मंदिर के दर्शन किए। तो मैंने कहा देखो देखो वो दिख रहा है ना, वो सुरई दिख रही है, झंडा जिस पे लगा है वो है जैन मंदिर, कर लो दर्शन, या नहीं वहां जाओ, वहां जाकर क्यों, वो तो यहीं से दिख रहा है। बोलते तो हैं मंदिर के दर्शन करने की बात, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, मंदिर के अंदर जो विराजमान भगवान आत्मा है, जो भगवान की मूर्ति है, उसके दर्शन करते हैं। और बोला जाता है, ऐसा नहीं कहता भगवान के दर्शन करना, बोला जाता है मंदिर के दर्शन करना, बोला जाता क्या नहीं, ऐसे ही देह की महिमा के बारे में कुछ भी बोला जाए, लेकिन बोला तो तभी जाता है कि जब उसके अंदर में आत्मा विद्यमान हो। मुर्दा को तो कोई नहीं बोलता ना, मुर्दा में क्या फर्क है, मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री के मुर्दा में और साधारण चपरासी के मुर्दा में क्या फर्क है? लेकिन प्रधानमंत्री में और चपरासी में फर्क है ना, वो कहेगा उस मुर्दे के अंदर में आत्मा हो उसका है ना, खाली मंदिर में और मूर्ति से विराजमान मंदिर में क्या फर्क है, बोलो फर्क है ना। तो ऐसे ही कहते देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, ये वैसे तो दो नंबर का भेद विज्ञान है और अपन ने इसमें एक ही नंबर पे रखा। वो स्त्री पुत्रादि की बात तो क्या करना, चढ़ाला में ही लिखा ना, के नजदीक का देह भी मेरी नहीं है तो बाकी की क्या बात करना है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है। देह में थोड़ी दिक्कत इसलिए है कि जन्म से लेके मरण तक के हमारा साथ रहता है, और जन्म के पहले हम थे और मरण के बाद भी हम रहेंगे, इसका भरोसा बहुत कम लोगों को है। किसने देखा, किसने देखा, वारातन करते कि नहीं करते, कुछ तो कह देते हैं साफ साफ शब्दों में, कुछ ऐसे हैं कहते नहीं हैं लेकिन मानते वे भी ऐसा हैं। बोलो छाबड़ा जी आप 1,00,000 रुपया मुझे दे दो, अगले भम्मे में आपको दे दूंगा। किसने देखा, फटाफट अगला भव किसने देखा आ जाएगा, ऐसे भले ही रोजी ना समझाते रहे हो कि अगला भव होता है, अगला भव होता है, जब अगले भव की बात आती है तो अगला भव है कि नहीं है इसका कोई पक्का लगता नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान जरा कठिन है, क्योंकि इस भव में इस देह से आत्मा को भिन्न होते देखते नहीं है और अगला भव पर हमें पूरा भरोसा है नहीं। लेकिन फिर भी सरल है। सरल क्यों है कि अपने आत्मा को अपनी देह से भिन्न होते नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों को तो देखते हैं। सगे बाप को तो देखा, क्या ख्याल में है ना, इसलिए सरल है। तो कठिन भी है सरल भी है। और लोगों को तो रोजाना मरते देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि मरने का बात भी अनुभव से सीखोगे तो अनुभव से सीखोगे, तब तक तो चिड़िया खेत चुन गई होंगी हैं? फिर कुआं खोदने से क्या फायदा, कि जब किसी खेती सूख जाए हैं? कहा कूप जब कृषि सुखाने, जब किसी सूख गई तो कुआं खोदने से फिर क्या फायदा है। इसलिए समझदार लोग दूसरों का मरण देखकर अपने मरण का निश्चय कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर का भेद विज्ञान है देह से भिन्नता का, इसमें भी ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, ख्याल में है ना। अब जो असली समय सार का भेद विज्ञान शुरू होता है वो तो आत्मा में ही पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के जो परिणाम हैं वे भी आत्मा नहीं है, यहां से शुरू होता है। जिसको मैं प्रमत्त और अप्रमत्त भी नहीं हूं ये बात उन्होंने शुरू की, उस पंक्ति में आता है देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, हे राग जिसमें किंतु जो इस राग से, हे राग जिसमें यद्यपि इस भगवान आत्मा में वर्तमान पर्याय में राग है, द्रिगुण वाले पर्याय वाले आत्मा में वर्तमान में राग है, किंतु वह उस राग से भी भिन्न है, लेकिन राग से वो जुदा है। देखो क्या है, देह में और राग में क्या फर्क है मोहनलाल जी, कि देह में तो आत्मा है और राग में आत्मा नहीं, आत्मा में राग है। बाप बेटे में जैसा फर्क होता है ना, बाप बेटे माने बाप का बेटा नहीं, अपना बाप और अपना बेटा, तीन पीढ़ी लेना दो पीढ़ी नहीं लेना, बाप और बेटे में माने कौन सी लेना, तीन पीढ़ी, तीन पीढ़ी माने मेरा पिता मेरा बाप और मेरा बेटा और बीच में मैं, तो बाप अपना नहीं है इसमें और बेटा अपना नहीं है इसमें, कुछ फर्क है कि नहीं है। अपन जिनसे हुए उसे बाप कहते हैं, जो अपन से हुआ उसे बेटा कहते हैं, जिसमें आत्मा रहता है उसे देह कहते हैं और आत्मा में जो रहता है उसे राग कहते हैं, ख्याल में है ना, फर्क अंतर समझ में है ना, कि क्या फर्क है साहब, दोनों में पिता पुत्र संबंध है, हमारे पिता में और हम में भी पिता पुत्र संबंध है और हमारे पुत्र में और हम में भी पिता पुत्र संबंध है, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, बाप को छोड़ना जितना आसान है उतना बेटे को छोड़ना नहीं है, बोला है? बहुत से लोग तो बाप को तो छोड़ देते हैं आसानी से, शादी होते ही छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं ना, जब बाप को छोड़ते हैं तब हमारा जो मानसिक बात होती है, जब बेटा हमें छोड़ के जाता है तब कितना फर्क होता है। बापों को सबने छोड़ा है, बेटों को किसी ने नहीं छोड़ा है, बेटों ने ही उन्हें छोड़ा है, तब भी होता है, इतिहास में देख लो, बेटा अपन को छोड़ के चला जाए, बेटा न्यारा हो जाए बाप से वो अलग बात है, लेकिन बाप कह के बेटे को न्यारा कर दूं ऐसे बाप बहुत कम देखने में मिलेंगे, क्यों होता कि नहीं होता। ऐसे ही कि राग और आत्मा का जरा गहरा संबंध है, कि वो आत्मा में है राग, आत्मा देह में है, तो देह तो मंदिर है, देह तो मकान है जिसमें आत्मा रहता है, लेकिन अपने आत्मा में जैसे समझ लो शरीर में खून रहता है ना, राग ऐसा है, वो शरीर मकान में रहता है, देह ऐसा है आत्मा के लिए। तो मकान को छोड़ देना जितना आसान है, शरीर में से खून को निकाल के फेंक देना उतना आसान है। इसलिए तो ये सद्भूत है, वो तो कहने की बात है कि मंदिर में भगवान है, देह में आत्मा है, वास्तव में तो देह में देह है और आत्मा में आत्मा है, वो तो कहने की बात है। दोनों सिर्फ एक क्षेत्र आप गाहे हैं, आत्मा में न देह का प्रवेश हुआ है न देह में आत्मा का प्रवेश हुआ है, लेकिन राग तो आत्मा की पर्याय में पैदा हुआ है, उसके साथ तो शास्त्रीय भाषा में संयोग संबंध है। त्रिवीणाबेन कौन सा संबंध है? संयोग संबंध, और राग के साथ तादात्म संबंध है, क्षणिक तादात है ना, क्षणिक। दो तरह का तादात होता है, नित्य तादात में क्षणिक तादात में, द्रव्य का और गुण का नित्य तादात्म संबंध है और द्रव्य का और पर्याय का क्षणिक तादात्म संबंध है, लेकिन संबंध एक ही है, तादात्म ही है, फर्क तो काल का है। जिस समय है उस समय तो वो तन्मय है ना, उस समय तो वो तादात्म है क्या नहीं है? क्यों एलएमडी का मिश्री मावा खाया तो 100 ग्राम खाया या 1.5 किलो खाया, क्या फर्क पड़ता है बाबू साहब? स्वाद तो एक ही सा है ना, मात्रा में फर्क पड़ेगा, पेट भरा क्या नहीं भरा, स्वाद में तो कोई फर्क नहीं है ना। तो तादात्म तो है ना, एक समय का है, अधिक समय का नहीं सही, लेकिन वो जितने समय है उतने समय तादात्म है। इसमें एक तादात्म सिद्ध संबंध है उसका, इसलिए कहते है राग जिसमें किंतु जो है राग जिसमें किंतु जो है राग से भी भिन्न है। क्या फर्क है? देह में आत्मा है, देह आत्मा नहीं, सुनना शब्दों पर ध्यान देना, आत्मा में राग है पर आत्मा राग रूप नहीं। वहां तो कहा था देह आत्मा नहीं, और यहां ऐसा नहीं कहा कि राग आत्मा नहीं, क्या कहा? आत्मा राग रूप नहीं, राग का रूप जुदा है और आत्मा का रूप जुदा है। रूप माने स्वरूप, स्वरूप माने स्वभाव, यानी भाव भेद है, यानी परिभाषा का भेद है, यानी लक्षण भेद है, ख्याल में आया ना? वो भाव भेद है, वहां तो द्रव्य भेद है, और द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों आ जाते हैं, समझ में आया ना? उनका द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, काल अलग है, भाव अलग है देह के साथ, तो और इसके साथ में अकेला भाव भेद है, इसलिए बोलते हैं आत्मा राग रूप नहीं है। यद्यपि राग आत्मा में ही पैदा हुआ है फिर भी आत्मा राग नहीं है, राग रूप नहीं है। इसके लिए आचार्यों ने कई उदाहरण दिए, समय सार के कर्ता क्रम अधिकार में 72 गाथा में 74 गाथा में कहा ना, जैसे जल में काई पैदा होती है, काई जल में ही पैदा भई लेकिन जल नहीं है, ऐसे ही राग आत्मा में पैदा हुआ लेकिन आत्मा नहीं है। पीपल में लाख पैदा होती है लेकिन पीपल लाख पीपल नहीं है क्योंकि पीपल की घातक है, ऐसे ही आत्मा में राग पैदा होता है लेकिन आत्मा राग नहीं है क्योंकि आत्मा का घातक है। तो ज्ञान भी तो आत्मा में ही पैदा होता है, और जानने रूप जो ज्ञान पर्याय है ना, वो भी तो क्षणिक तादात्म संबंध ही है ना, नित्य तादात्म संबंध नहीं है। तो राग का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? क्षणिक तादात्म संबंध। और सम्यक ज्ञान का, ज्ञान पर्याय का जो आत्मा को जानती है, उसका आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? क्षणिक तादात्म संबंध। तो दोनों एक ही संबंध भय ना, तो राग मेरा नहीं है और ज्ञान मेरा है, ऐसे चले। जब दोनों का संबंध एक ही है तो या तो दोनों की छुट्टी करो और या दोनों को रखो। कहां छुट्टी कर देंगे कि नहीं, अभी करो, एक से करो, इसी स्टेप में करो। ख्याल में है कि नहीं? इस स्टेप में तो नहीं होगा, राग से भेद विज्ञान है, इस स्टेप में तो नहीं होगा, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में वाला स्टेप है, और वो अगले में जो करेंगे वो अनुपचय सद्भूत व्यवहार में वाला स्टेप हो गया, नयों को भूल गए कि है याद, समझ गए आप कि इसमें नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे, क्या फर्क है, जब दोनों के साथ एक ही क्षण का तादात्म संबंध है तो फिर क्या फर्क है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसी मां के शादी के पहले एक संतान हुई, एक संतान शादी के बाद हुई, अब दोनों का उस संतान के साथ मां का क्या संबंध है, बोलो, दोनों का मां बेटे के ही संबंध है कि नहीं, वो पहले हुई वो भी बेटा है और वो उसकी मां है, बाद में हुई वो भी उसका बेटा है और वो उसकी मां है, एक ही संबंध है कि नहीं, क्या फर्क है, बोलिए, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, एक भी संबंध है। जरा और उसको गहरा रंग देना हो तो कर्ण और कुंती में और अर्जुन और कुंती में क्या संबंध है, बोलो, क्या फर्क है, बोलो सोनलाल जी, कर्ण भी कुंती का बेटा है और कर्ण की मां कुंती है, सगी है ना, अर्जुन की भी मां भी कुंती है और अर्जुन भी कुंती का बेटा है, बोलो क्या फर्क है, दोनों में एक ही है कि नहीं है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, अर्जुन की रक्षा के लिए कुंती जान देवे तैयार है और कर्ण को मारने के लिए जान देवे तैयार है, अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही तो वो कवच कुंडल मांग लाई, क्यों, उसका मरने का इंतजाम करके आई, उसे मारने को तैयार है और अर्जुन को किसी कीमत पे मरना नहीं चाहिए, मुझे कितना भी अपमान सहन करना पड़े, हैं, तो भीख मांग के लाई, प्राणों की भीख मांग के लाने के लिए गई अर्जुन के उसी कर्ण से, क्या क्या का बात का फर्क है, बोलो मुझे बताओ आप, कि एक शादी के पहले का और एक शादी के बाद, एक वैध संतान और एक अवैध संतान, तो राग अवैध संतान के समान है क्योंकि वो पर के लक्ष्य से पैदा हुई है, जो परपति के लक्ष्य से पैदा हो, परपति के संयोग से पैदा हो, वो अवैध संतान होती है, वो कर्ण जैसी होती है, और समझे ना, जो स्वपति के संयोग से है वो वैध संतान होती है, वो अर्जुन जैसी होती है, सोच लो, है ना, राग कर्ण जैसा है और ज्ञान अर्जुन जैसा है। अगले स्टेप में तो उसका भी निषेध करेंगे, लेकिन इस स्टेप में नहीं चलेगा, दोनों को एक कोटि में नहीं रखा जाता। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि कोई मां बहन के जब पहले दफे बाल बच्चा होता है तो उसके जब गर्भ रहता है तो उसका मन नाचने लगता है, पति सुनता है तो पति खुश खुश खुश, जैसे कभी खुश खुश होते आपने देखा हो किसी को, चाहे नहीं देखा हो लेकिन सिनेमा में तो देखा ही होगा ना, क्यों है, सास को पता चले तो सास फूल ही नहीं समाती है यहां वहां, है क्यों, फिर मोहल्ले वालों को पता चले, जहां जहां खुशी, पीहर वालों को पता चले तो खुशी 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 का माहौल होता क्या नहीं, फिर आठ माह किया जाता है, हजारों लोगों का भोजन है, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बाजे बजते हैं, और जब वो महीना दो महीने का हो जाता है और कोई भी मेहमान आता है तो वो मां बड़े गौरव के साथ अपने बच्चे को ले जाकर उसकी गोदी में रख देती है, और वो 100-200 रुपया जो कुछ भी दे ये वो अलग बात है। माने ये सारी जो प्रक्रिया चलती है वो कितने गौरव के साथ चलती है, वो मां अपने को कितना गौरवान्वित अनुभव करती है। मैं कहता हूं कि वो ही बच्चा यदि उसके शादी के पहले हो जाता तो क्या होता, बोलो, ये समाचार उसको पता लगता तो वो खुश खुश होती, जिसके संयोग से रहा है गर्भ उसको पता लगे तो वो तो लड्डू बांटता कि चलो 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 कोई अस्पताल में चलो इसको गर्भ गिरवा दे, मारने की प्लानिंग, दोनों मां बाप गजब हो गया, क्यों, विवर क्विंटन से भी महापापी है, वो तो इराकियों को मार रहा है, लेकिन ये तो सज्ञ अपने बच्चों को मारने को तैयार, मां बाप बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया, ये कितना महापाप है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जब भी ये बात मेरे दिमाग में आती है तो मेरा दिल खोलने लगता है, इन जैसे पापी मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखते महाहत्यारी। क्यों समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। दुनिया में तो शत्रु मारते हैं और अपनी सुरक्षा शत्रुओं से करनी पड़ती है, और सुरक्षा कौन करता है बोलो? अपने मां बाप भाई बहन अपने, यही तो अपनी सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बच्चे को 2 वर्ष का हो और आप ऐसा हाथ दिखाओ तो सबसे पहले वो क्या चिल्लाता है? मां, क्योंकि वो समझते हैं मेरी रक्षा करने वाली मां है, जिस पर उसका इतना अटूट विश्वास हो, जो रक्षक हो। मां बाप रक्षक होते हैं कि नहीं? अब वे ही मां बाप जिसकी हत्या कराने के लिए जाएं, पैसा देके हत्या कराएं, जैसे सुपारी दी हो किसी की, कितने पापी होंगे वो सोचो तुम। और वो डॉक्टर 100-200 रुपया के लिए, 500-1000 रुपया के लिए, जिस डॉक्टर ने सारी दुनिया को बचाने के लिए प्रमाण पत्र लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, क्यों सौगंध खाई है जीवन के बचाने का, और वो हत्या करे, और हत्या भी किसकी? अब बोलो, वो आदमी जो है, ये तो आपने देखा ही होगा टीवी सिनेमा में, कि जब वो देता है लड़ाई का मौका आता छतरी, तो वो सामने वाला बिना हथियार के होता है, ये हथियार लिए होता है, तो एक तलवार उसे देता है, क्यों? एक तलवार खुद लेता है, अब लड़ो, बराबरी से लड़ाई होती है। वो सामने वाला निहत था, हाथ पैर नहीं चला सके, क्यों? बाहर आने की ताकत नहीं, और ये सब हत्यारे मिलकर उस निहत्ते की हत्या कर देते हैं। ये कितने बड़े पापी होंगे, ये मेरा तो रोंगटे खड़े हो जाए, मैं कभी माफ नहीं कर सकती, क्या? लेकिन मैं ये कहता हूं, अपना सवाल तो ये चल रहा है कि वो जब शादी के पहले अवैध संतान होती है तो उसे मारने का भाव मां बाप को भी आता है। ये तो पंचम काल की बहरियारी है, सभी 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में कि अब हजारों को आने लग गया। अब मेरा उदाहरण पुराने जमाने का ही समझना भाई साहब, जब ये भाव किसी मां बाप को नहीं आता था उसकी, उसका समझना। अब आज तो वैध का भी हत्या करने की सोचने लग गए ना, पति के संयोग से हुआ है और उसे भी मारने की सोचने लग गए। मेरा उदाहरण तब का समझना कि जब वैध संतान का कोई गर्भपात नहीं कराता था, तब का ही उदाहरण लेना भाई साहब। मां बाप ने ये सोचा, और फिर सास ससुर को पता चला, मां उनको पता चला, क्यों? तो क्या होगा? खैर, कोई मजबूत हृदय की मां हो, बच्ची हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरा कितना ही मान अपमान हो, लेकिन मैं इसकी जान नहीं लूंगी, इसे अब आगे आए तो पैदा करूंगी। फिर संकल्प हो जाए तो भी 8वां कोई नहीं मनाएगा उसका। 8वां तो समझते ना क्या, वो उत्सव होता है। 1000 आदमी तो क्या, 2 आदमी को भी कोई नहीं जमाएगा। हो जाने के बाद बाजे नहीं बजेंगे, लड्डू नहीं बटेंगे, और बच्चा 3 महीने का हो जाए तो कोई आएगा तो मां गौरव के साथ उसकी गोद में अपने बच्चे को। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये फर्क कहां से आया? क्यों ये फर्क कहां से आया? नहीं आना चाहिए था ना ये फर्क, लेकिन आ गया ये फर्क। तो ये इस बात का फर्क है कि वो अवैध संतान है। भले उसे ऐसे ही राग आत्मा की पर के लक्ष्य से होने वाली अवैध संतान है, और ज्ञान आत्मा की स्वा के लक्ष्य से होने वाली वैध संतान है, इसलिए उन दोनों को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसलिए भेद विज्ञान के 3रे स्टेप में है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी भिन्न है की बात करी। अब उसके बाद में और भी स्टेप भेद विज्ञान का है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
शांति सुधावर साए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर से आप क्रिया से सुन तो दे परमागम कहलाए दिन वाणी शांति सुदावर साए दिन वाणी परमागम भाग्यों को अरे मन मोते बधु के मुख का दर्पण भव सागर त्रेताए दिन वाणी शांति सुदावर साए दिन वाणी राज रूप अंगारों द्वारा महादेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए दिन वाणी शांति सुदावर साए दिन वाणी सत्य तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए दिन वाणी शांति सुदावर साए दिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी।